यरमिया अध्याय 14, यरमिया अध्याय 14 पद 1। यहोवा का वचन जो यरमिया के पास सूखे वर्ष के विषय में पहुंचा। वो क्षेत्र सूखाग्रस्त हो गया था। यरमिया अध्याय 14 पद 2 से लेकर 7 तक। यहूदा विलाप करता और फाटकों में लोग शोक का पहरावा पहने हुए भूमि पर उदास बैठे हैं, और यरूशलेम की चिल्लाहट आकाश तक पहुंच गई है, और उनके बड़े लोग उनके छोटे लोगों को पानी के लिए भेजते हैं, वे गड्ढों पर आकर पानी नहीं पाते, इसलिए छूचे बर्तन लिए हुए घर लौट जाते हैं। वे लज्जित और निराश होकर सिर ढांप लेते हैं। देश में पानी न बरसने से भूमि में दरार पड़ गया है। इस कारण किसान लोग निराश होकर सिर ढांप लेते हैं। हिरनी भी मैदान में बच्चा जनकर छोड़ जाती है, क्योंकि हरी घास नहीं मिलती। जंगली गधे भी मुंडे टिलों पर खड़े हुए गीदड़ों की नाई हांफते हैं। उनकी आंखें धुंधला जाती है, क्योंकि हरियाली कुछ भी नहीं है। हे यहोवा, हमारे अधर्म के काम हमारे विरुद्ध साक्षी दे रहे हैं। हम तेरे संग छोड़कर बहुत दूर भटक गए हैं, और हमने तेरे विरुद्ध पाप किया है, तो भी तू अपने नाम के निमित्त कुछ कर। अकाल के बारे में संदेश पहुंचाने के बाद वो प्रार्थना करता है। यरमिया अध्याय 14 पद 8 और 9। हे इसराइल के आधार, संकट के समय उसका बचाने वाला तू ही है। तू क्यों इस देश में परदेशी की नाई है? तू क्यों उस बटोई के समान है जो रात भर रहने के लिए कहीं टिकता हो? तू क्यों एक विस्मित पुरुष या ऐसे वीर के समान है जो बचा ना सके? तो भी हे यहोवा, तू हमारे बीच में है और हम तेरे कहलाते हैं, इसलिए हमको ना तज। परमेश्वर ने यरमिया को मना किया था, परंतु वो फिर भी प्रार्थना करता है। यरमिया अध्याय 14 पद 10 और 11। यहोवा ने इन लोगों के विषय यूं कहा, इनको ऐसा भटकना अच्छा लगता है, ये कुकर्म में चलने से नहीं रुके, इसलिए यहोवा इनसे प्रसन्न नहीं है। वो इनका अधर्म स्मरण करेगा और उनके पाप का दंड देगा। फिर यहोवा ने मुझसे कहा, इस प्रजा की भलाई के लिए प्रार्थना मत कर। यरमिया ने प्रार्थना की, परंतु परमेश्वर का वही उत्तर है, इनकी भलाई की प्रार्थना मुझसे मत कर। यरमिया अध्याय 14 पद 12 से लेकर 15 तक। चाहे वे उपवास भी करें, तो भी मैं इनकी दुहाई न सुनूंगा, और चाहे वे होम बलि और अन्न बलि चढ़ाए, तो भी मैं उनसे प्रसन्न न होऊंगा। मैं तलवार, महंगी और मरी के द्वारा इनका अंत कर डालूंगा। तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, देख, भविष्यत वक्ता इनसे कहते हैं कि ना तो तुम पर तलवार चलेगी और ना महंगी होगी। यहोवा तुमको इस स्थान में सदा की शांति देगा। और यहोवा ने मुझसे कहा, ये भविष्यत वक्ता मेरा नाम लेकर झूठी भविष्यवाणी करते हैं। मैंने उनको ना तो भेजा और ना कुछ आज्ञा दी और ना उनसे कोई भी बात कही। वे तुम लोगों से दर्शन का झूठा दावा करके अपने ही मन से व्यर्थ और धोखे की भविष्यवाणी करते हैं। इस कारण जो भविष्यत वक्ता मेरे बिना भेजे मेरा नाम लेकर भविष्यवाणी करते हैं कि इस देश में ना तो तलवार चलेगी और ना महंगी होगी, उनके विषय यहोवा यूं कहता है कि वे भविष्यत वक्ता आप तलवार और महंगी के द्वारा नाश किए जाएंगे। परमेश्वर के नाम में अपने विचार प्रकट करना एक भयंकर बात है। आप अपने विचार, अपनी भावनाएं तथा अपनी धारणाएं अपने आप प्रस्तुत करें। इस विषय में प्रेरित पौलुस बड़ी सावधानी बरताता है, स्पष्ट हो। उसने कहा था, प्रभु की ओर से मुझे ऐसी कोई प्रेरणा प्राप्त नहीं हुई है, परंतु ये मेरा अपना विचार है। ये एक अच्छा अभ्यास है। आप अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं। अपने विचार प्रस्तुत करने में कोई बुराई नहीं है, परंतु आप यदि परमेश्वर के नाम में अपने विचार प्रस्तुत किए जाएं, तो ये उचित नहीं, क्योंकि जो आप कहते हैं यदि वो सत्य सिद्ध ना हो तो आप परमेश्वर को झूठा और मूर्ख बना देते हैं। आज ऐसे बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर के नाम में वो सब कहते हैं जो ना तो प्रभु का वचन है और ना ही बाइबल की शिक्षा, वरन उनकी अपनी बातें हैं जो बाइबल विरोधी है। यहूदा के भविष्यद्वक्ता भी ऐसा ही कर रहे थे। सब कुछ अच्छा होगा, समृद्धि आएगी और सब चंगे होंगे, सब समृद्ध होंगे। परमेश्वर कहता है, सब अपने लिए कार खरीदो, क्योंकि परमेश्वर तुम्हें आशीष देगा, समृद्धि प्रदान करेगा, शांति, शांति और समृद्धि। परमेश्वर कहता है, ये मेरा संदेश नहीं है, क्योंकि परमेश्वर तो कहता है। दूसरा तिमोथियुस अध्याय 3:12, जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। ऐसे ही आज के अनेक झूठे भविष्यद्वक्ता कहते हैं कि यदि मसीह यीशु में विश्वास होता तो उसे क्रूस का कष्ट नहीं उठाना होता। कैसी निंदा! परमेश्वर उनका न्याय करेगा। यरमिया अध्याय 14:16, और जिन लोगों से वे भविष्यवाणी कहते हैं वे महंगी और तलवार के द्वारा मर जाने पर इस प्रकार यरूशलेम की सड़कों में फेंक दिए जाएंगे कि ना तो उनका, ना उनकी स्त्रियों का और ना उनके बेटे बेटियों का कोई मिट्टी देने वाला रहेगा, क्योंकि मैं उनकी बुराई उन्हीं के ऊपर उंडेलूंगा। उनकी लोथ सड़कों पर पड़ी रहेगी। संसार के कुछ भागों में ऐसी घिनौनी बातें हो रही हैं। मृतक सड़कों पर फेंक दिए जाते हैं और सुबह उनकी लोथ कूड़े में फेंक दी जाती है। ये बड़े दुख की बात है। जब कोई मर जाता है तो आप में क्षमता नहीं कि उन्हें दफना दे, अतः उन्हें सड़क पर फेंक दिया जाता है कि कोई उन्हें उठाकर फेंक दे। यरमिया अध्याय 14:17, तू उनसे ये बात कह, मेरी आंखों से दिन रात आंसू लगातार बहते रहे। रोने वाला भविष्यद्वक्ता। यरमिया अध्याय 14:17-18, वे न रुके क्योंकि मेरे लोगों की कुवारी बेटी बहुत ही कुचली गई और घायल हुई है। यदि मैं मैदान में जाऊं तो देखो तलवार के मारे हुए पड़े हैं, और यदि मैं नगर के भीतर आऊं तो देखो भूख से अधमुए पड़े हैं, क्योंकि भविष्यद्वक्ता और याजक देश में कमाई करते फिरते और समझ नहीं रखते हैं। यरमिया परमेश्वर से विवाद करता है, क्या तूने यहूदा से बिल्कुल हाथ उठा लिया? क्या तू सियोन से घिन करता है? नहीं, तूने क्यों हमको ऐसा मारा कि हम चंगे हो ही नहीं सकते? हम शांति की बाढ़ जोते रहे तो भी कुछ कल्याण नहीं हुआ, और यद्यपि हम अच्छे हो जाने की आशा करते रहे तो भी घबराना ही पड़ा है। हे यहोवा, हम अपनी दुष्टता और पुरखाओं के अधर्म को भी मान लेते हैं, क्योंकि हमने तेरे विरुद्ध पाप किया है। अपने नाम के निमित्त हमें ना ठुकरा, अपने तेजोमय सिंहासन को अपमान न कर। जो वाचा तूने हमारे साथ बांधी उसे स्मरण कर और उसे ना तोड़। क्या अन्य जातियों की मूर्तों में से कोई वर्षा कर सकता है? ऐसा भीषण अकाल कि लोग मक्खियों की नाई मर रहे हैं। चाहूं ओर त्राही त्राही मची हुई है। क्या अन्य जातियों के देवता वर्षा करवा सकते हैं? यरमिया अध्याय 14 पद 22। क्या आकाश झड़ियां लगा सकता है? हे हमारे परमेश्वर यहोवा, क्या तू ही इन सब बातों का करने वाला नहीं है? हम तेरा ही आसरा देखते रहेंगे, क्योंकि इन सारी वस्तुओं का सृजनहार तू ही है। यहां भी अकाल की ही भविष्यवाणी है।